يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتينا أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورہ احزاب کی تفسیر چل رہی ہے, کافی لمبی سورت بھی ہے, احکامات بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. تو چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ اپنے کچھ نا نوٹس بنائیں, جیسے اس کے اندر تھوڑے سے یعنی اوور آل تھیم تو اس کی ایک ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اذیت سے بچانا, ٹھیک ہے, اوور آل تھیم یہی ہے. لیکن اس اوور آل تھیم کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیمز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ سورہ احزاب کی پوری ایک الگ تھیم تھی, اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا یہ ایک الگ تھیم تھی, ٹھیک ہے. تو ان کا نا آپ چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو نوٹس بنانے چاہیے, اگر آپ آلریڈی نہیں بنا رہی ہیں تو چاہیے کہ اس طرح کے نوٹس بنا لیں تاکہ آپ کے پاس ایک اوور آل پکچر رہے سورہ احزاب کی, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ ٹیبل آف کانٹینٹ سے بھی مدد لے سکتی ہیں, کیونکہ معرف یہ معرف القرآن کے شروع میں ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں, ان کے اندر بھی اسی طرح انہوں نے تھیمز کو الگ الگ ہیڈنگز کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے. سورہ احزاب میں جیسے انہوں نے شان نزول کے بعد پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مشوروں پر عمل سے ممانعت, زمانہ جاہلیت کی تین رسوم کی تردید, ٹھیک ہے, تو یہ بھی پریٹی مچ سفیشنٹ ہیں, لیکن آپ اپنے طور پر بھی اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بھی ان کو لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے لیے یہ زیادہ یاد رکھنا آسان ہو. اچھا, تو اب یہ جو احکامات چل رہے ہیں, سات احکامات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہیں ازدواجی تعلقات سے تعلق رکھنے والے, پانچ احکام سات, تو اس میں ہم تھے پانچویں حکم کے اوپر نا. پانچواں حکم پڑھ لیا تھا ہم نے, پیج نمبر 190 کے اوپر خیر شروع کر رہے ہیں. جو آیات مذکورہ میں مؤمنہ کی قید سے مستفاد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کہ اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ کی عورتوں یعنی کتابیات سے نکاح بنص قرآن حلال ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورت کا مومن ہونا شرط ہے, کتابیات سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو جہاں کچھ چیزیں ایکسٹرا حلال کی گئیں نبی علیہ السلام کے اوپر, تو وہیں پر کچھ چیزیں نبی علیہ السلام کے لیے حرام بھی کر دی گئیں, ٹھیک ہے, جو کہ ادروائز مومنین کے لیے حلال ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, ان پانچوں احکام کی خصوصیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد عام مسلمانوں کا حکم اجمالاً ذکر فرمایا ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, یہ ازواج کے معاملے میں ہم نے ان کے اوپر کیا فرض کیا. وما ملکت ایمانہم, تو یہ تو وہ مسئلہ ہے جو کہ ہم اصول شاشی کے اندر بھی خاص اور عام کی بحث کے اندر پڑھ چکے ہیں, کہ یہ جو مہر ہوتا ہے تو مہر یعنی کتنی اس کی, کیا تھا وہ مسئلہ کہ میکسیمم اس کی مقدار جو ہے وہ کوئی نہیں ہے, تو منیمم مقدار کتنی ہے, 10 درہم ہے یا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہے. ما فرضنا علیہم, یعنی کچھ نہ کچھ تو ہم نے فرض کیا ہے, پھر وہ کیا ہے, تو اس کے اوپر ہم نے پورا اصول شاشی کے اندر مسئلہ پڑھا ہے. یعنی احکام مذکورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں, باقی مسلمانوں کے نکاح کے لیے جو ہم نے فرض کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. مثلا عام مسلمانوں کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا, یعنی مہر ہونا ضروری ہے, اور کتابیات سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح سابقہ احکام میں جو قیدیں شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں وہ اوروں کے لیے نہیں ہیں, جیسے کہ اپنے کزن سے آپ شادی صرف اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ان کزن نے آپ کے ساتھ یعنی ہجرت بھی کری ہو, موافقت ہو ہجرت کے معاملے میں آپ کے ساتھ. دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ وہ اپنی کزن سے شادی نہیں کر سکتے. آخر میں فرمایا لکیلا یکون علیک حرج, یعنی نکاح کے معاملے میں آپ کے لیے یہ خصوصی احکام اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ ہو, اور جو قیدیں شرطیں آپ پر بنسبت دوسرے مسلمانوں کے زائد لگائی گئی ہیں اگرچہ بظاہر وہ ایک قسم کی تنگی ہیں، مگر جن مسائل اور حکمتوں کے پیش نظر آپ سسن کے لیے شرطیں لگائی گئی ہیں، ان میں غور کریں تو وہ بھی آپ کی روحانی پریشانی اور تنگ دلی کو دور کرنے ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہ فائدے میں ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح فائدے میں تھی، اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی جو پابندی ہے نا، وہ ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ ہم بھی روحانی پریشانی اور تنگ دلی سے بچ سکیں۔ پابندیوں کو جب ہم آبزرو نہیں کرتے ہیں، تب جو ہے ہماری روحانی پریشانیاں یعنی دل کی بے سکونی اور گھروں کی بے سکونی اور معاشرے کی بے سکونی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی ہے مقصد شریعہ، تاکہ انسان، یعنی کیا مقصد شریعہ ہے؟ کہ انسان اطمینان سے رہے، سکون سے رہے، اور نہ صرف دنیا کے سکون سے رہے بلکہ آخرت کے بھی کے اندر بھی سکون سے رہے۔ یہ ہے مقصد شریعہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اصل مقصد تو یہی ہے نا، اسی کو دوسرے الفاظ میں کامیابی بھی کہتے ہیں۔ اوکے، باقی پھر اس کے ذیل میں اور مقاصد شریعہ آتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہی ہے۔ تو وہی یہاں پر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل میں بھی یہی ہے کہ جو پابندیاں بھی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے ہی ہیں، کامیابی کے لیے ہی ہیں۔ یہاں تک نکاح کے متعلق پانچ احکام آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کوئی خصوصیت رکھتے ہیں۔ آگے دو حکم انہی پانچ احکام سے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً چھٹا حکم، ترجی من تشاء منہن و تؤوی الیک من تشاء۔ ترجی ارجاءً سے مشتق ہے، ارجا یرجی ارجاءً، تو یرجی کو گردان میں چلائیں تو ترجی آتا ہے، تو جس کے معنی مؤخر کرنے کے ہیں، یعنی ڈیلے کر دینا کسی چیز کو۔ اور تو بھی ایواءً سے مشتق ہے، جس کے معنی قریب کرنے کے ہیں، آوا یووی ایواءً۔ کیا یہ آوا یووی ایواءً؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جن کو چاہے مؤخر کر دیں، جن کو چاہے اپنے قریب کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جن کو چاہے کہنے کی ہم آپ کو بعد میں ٹائم ملے گا، اور جن کو چاہے ابھی ٹائم دے دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص حکم ہے، عام امت کے لوگوں کے لیے جب متعدد بیویاں ہوں تو سب میں برابری کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی برابری کرنا فرض ہوا، کیونکہ خلاف کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ برابری سے مراد کیا برابری ہے؟ نفقہ کی برابری اور شب باشی میں برابری، کہ جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزاری ہیں اتنی دوسری اور تیسری کے ساتھ گزارنا چاہیے، کمی بیشی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم تو پہلی بات تو یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے ہی نہیں، لیکن جہاں پر ہے بھی، جو کر بھی رہے ہیں نا، تو ان کو اس حکم کا نہیں پتا ہوتا، اور یا جو کرنے کے شوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ارادے رکھتے ہیں، تو ان کو احکام وغیرہ کا تو پتہ نہیں ہوتا، یا فکر ہی نہیں ہوتی احکام کی، ان کو نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈالنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو زلفوں کے اسیر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آخرت کے عذاب کا بھی ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو بھائی برابری کرنی ہے، شباشی کے اندر بھی، نفقے کے اندر بھی، تو اتنی دوسری اور تیسری کے ساتھ گزارنا چاہیے، کمی بیشی ناجائز ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں مکمل اختیار دے دیا گیا، سب ازواج میں برابری کے حکم سے مستثنا کر دیا گیا، اور آخر آیت میں یہ بھی اختیار دے دیا کہ جس بی بی سے ایک مرتبہ اجتناب کا ارادہ کر لیا، پھر اگر چاہیں تو اس کو پھر قریب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو اوائڈ کرنے کا ارادہ اگر کیا بھی ہے تو چاہیں تو اس کو پھر قریب کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب رد و بدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، کا یہی مطلب ہے۔ ازل کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہٹا لینا، جدا کر لینا۔ تو جس بیوی کے ساتھ آپ نے ارادہ کر لیا یعنی جدا ہونے کا، تو آپ اس کو واپس بھی لے کر آ سکتے ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جدا کرنے کا مطلب طلاق دینا نہیں، بلکہ اس کو ٹائم نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا۔ اچھا، اس کے اوپر ایک ذہن میں بات آئی کہ ماشاءاللہ کچھ آج کل علماء ہیں، بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں، اچھی ترغیبی باتیں کر رہے ہیں، اور ہیں بھی علماء حق میں سے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ شادیوں کا موضوع آتا ہے نا، تو وہ ذرا ان کا مزاج تھوڑا سا اس معاملے میں لطیفانہ مزاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خوب جو ہے وہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی اور اپنی مثالیں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے جو ماشاءاللہ دیندار تبلیغی جماعت کے بیک گراؤنڈ والے اور جو علم حاصل کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے نوجوان جو دین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ठीक है ना। तो अब उनको उनके बयान बड़े अच्छे लग रहे हैं, उनका लहजा भी जरा ऐसा होता है, और फिर वो बातें भी माशाल्लाह दूसरी बीवी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बड़े नौजवान जो है वो सुन भी रहे हैं। अच्छा, इसके सुनने से कुछ लोग तो माशाल्लाह, यानी इन बातों पे तो खूब अमल करना होता है, राइट। बाकी तो अमल करने के काबिल नहीं होती बातें ना, लेकिन ये बातें खूब काबिल अमल भी होती हैं, तो फिर बाकायदा अमल भी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, ठीक है। और जो अमल नहीं करते हैं तो वो अमल का इरादा रखते हैं, और इस इरादा रखने से उनकी बीवियों को भी पता लग जाता है कि जिनका इरादा बन रहा है, जब भी तो इनकी बातें सुन रहे हैं इतनी ज्यादा, तो अब जो है वो बीवियों में बेचैनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये बेचैनी जो शुरू होती है, अब ये रुकती तो नहीं है ना बेचैनी की हद तक। ये तो फिर जैसे किसी ने कहा कि जी जानवर तो बेजुबान होते हैं, तो उनके साथ आप कुछ कर लें तो कुछ नहीं होने वाला है। बीवी तो बेजुबान नहीं होती ना, तो बीवी के पास तो बल्कि माशाल्लाह जुबान भी अच्छी होती है, ठीक है। तो फिर इस वजह से फिर घरों के अंदर ना है ना नाचाकियां पैदा हो रही हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं, क्योंकि बीवी को एक अभी एक एक फिक्र पड़ चुकी है कि जी इन्होंने जो है ना वो कर ही लेनी है जाकर के, और अब चूंकि बीवी हक में नहीं होती है, तो अब उन्होंने अगर करनी भी है तो छुप छुपा के करनी है, ठीक है ना। तो अब ये एक ऐसी टेंशन क्रिएट हो जाती है घरों के अंदर कि जिसकी वजह से मियाँ बीवी तो मुतासर होते ही हैं, बच्चे भी मुतासर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब दीन के अंदर इजाजत है, और दीन वाले कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह हैंडल कर सकते हैं, तो भाई आप हैंडल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपने हमारे बड़े बुजुर्गों को इस टॉपिक के ऊपर बातें करते हुए नहीं सुना होगा, हजरत जी ने बातें नहीं करी, मना नहीं किया कि नहीं कर नहीं सकते, हराम है, राइट। नहीं, मना तो नहीं कर सकते क्योंकि शरीयत में जायज है, लेकिन इसको प्रमोट भी तो नहीं करते ना। उसी तरीके से बड़े बड़े अकाबरीन है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब है, इतने बड़े दूसरे, वो इसी टॉपिक के ऊपर बात तो नहीं करते है ना, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि इसकी वजह से घरों के अंदर क्या, लेकिन घरों के झगड़ों का तो उनको अंदाजा होता है ना, जो घरों के लेवल पे मसले सॉल्व करने में लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो हर आलम को तो इसका अंदाजा नहीं होता ना। तो इस वजह से ये चीजें जो है ना, इनके बारे में भी जरा यानी थोड़ा सा करना पड़ता है कि कौन सी बात कहाँ करनी है, और ये भी देखना है कि आपकी बातों को कब वो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, फिर उनको भी ख्याल आता है कि हाँ जी मेरी बातों को लोगों ने गलत मानी ले लिया है, उसको गलत एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया, लेकिन घर तो बर्बाद हो जाता है ना इस तरीके से फिर। और बच्चों के ऊपर तो फिर देख ना मिटने वाला जो असर पड़ जाता है, तो वो तो पड़ गया, ठीक है। तो इस वजह से ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, और इसी तरह के कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे तलाक का टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है, तो उसको ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज बख्शा कि अजवाज मुतहरात में बराबरी करने के हुक्म से मुस्तस्ना फरमा दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्तिस्ना और इजाजत के बावजूद अपने अमल में हमेशा बराबरी करने का इंतजाम ही फरमाया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला का इस्तिस्ना अपनी जगह पर, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने ऐसा नहीं किया इसको, यानी इसको यानी ये प्रिविलेज होने के बावजूद उस प्रिविलेज को इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एवरी प्रिविलेज डज नॉट मीन यू हैव टू यूज इट, ठीक है ना। तो चार शादियों की प्रिविलेज है, लेकिन वो किसी मकसद से है, किसी मजबूरी के तहत है, या किसी फसाद को अवॉइड करने के लिए, ये नहीं कि नया फसाद क्रिएट करने के लिए आप उस प्रिविलेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक फसाद पहले नहीं था तो अब आपने क्रिएट कर दिया इस तरीके से, भाई ये तो फसाद को रफा करने के लिए था, ठीक है। और वो जब ऐसा मामला हो कि जी हाँ लोग शादियां करते हैं और मिजाज वगैरह बना हुआ भी है, तो मुआशरे के अंदर जो बेनिकाही औरतें होती हैं कि भाई मर्द अवेलेबल ही नहीं है, या मैदान जंग के अंदर बड़ी तादाद में मर्द खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो अब बेवाओं को बेसहारा छोड़ देना ये जायज नहीं है एक इस्लामी मुआशरे के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन सब चीजों को कंसिडर करना होता है, और फिर कहीं जाकर के इस किस्म का कोई स्टेप उठाया जा सकता है। लेकिन हमारे अकाबरीन ने आज के जमाने में इससे डिस्करेज जरूर किया है, क्योंकि आज हम लोगों के जो अहवाल है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। हमसे तो एक बीवी का ईमान नहीं सलामत रखा जाता, अपने जो बच्चे हैं एक ही बीवी से, वो बच्चे जो है वो संभालने नहीं जाते, तो दो करने के बाद तो आपने डबल कर दिया ना अपनी जिम्मेदारियों को, और अपनी परेशानियों को जो भी आपकी लगी हुई है तो आपने उसको डबल कर दिया है। तो भैया इफ यू कैन हैंडल इट देन डू इट, इफ यू कैन नॉट हैंडल इट देन हजरत जी क्या फरमाते हैं कि बस आप दीन का काम करें, आप खिदमत करें अल्लाह ताला की, आप अल्लाह के दीन की, आप इस काम के अंदर लगें, और इस दर से आप बिल्कुल ही बेतमा हो जाएं। वो एक लतीफा पता नहीं बयान में भी शायद सारी ने सुनाया था कि वो एक साहब जो थे वो एयरप्लेन में बैठे हुए थे, तो उनके कंधे के ऊपर उनका तोता बैठा हुआ था। अब वो एयर होस्टेस साहब आती है तो तोता जो है वो एयर होस्टेस साहब के साथ जो है वो मजाक करता था, तो एयर होस्टेस को बड़ा अच्छा लगता था ये तोता जो है वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो वो तोते को जो है वो प्यार करती थी, तोता भी उनको प्यार करता था। तो अब ये साहब जो है ना, इनको उनका अच्छा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई तोता जो है वो एयर होस्टेस साहिबा के साथ है तो फ्री हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब एयर होस्टेस साहिबा आई ना, तो उन साहब ने कहा कि जी मैं भी ये करता हूँ। तो इन्होंने जब किया तो एयर होस्टेस साहिबा ने जो है जहाज का दरवाजा खोला और इनको जो है वो नीचे धक्का दे दिया, ठीक है, जहाज उड़ते हुए जहाज से नीचे धक्का दे दिया। अब जाहिर है तोता तो इनके कंधे के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, तो वो तोता भी इनके साथ नीचे, ठीक है। अब तोते ने तो उड़ना शुरू कर दिया और ये साहब जो है वो जमीन की तरफ गिरना शुरू हो गए। तो अब इन्होंने तोते से कहा कि भाई ये क्या हुआ, तुम जब कर रहे थे तो तुम्हें तो तुम्हारे करने से तो वो खुश हो रही थी, और जब मैंने किया तो मुझे उठा कर धक्का दे दिया, अब मैं क्या करूं। तो तोते ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा कि भाई मुझे तो आता है उड़ना, ठीक है, तो आपको भी अगर उड़ना आता होता ना तो फिर आप वो हरकत करते, लेकिन आपने उड़ना तो सीखा नहीं और ऐसी वो हरकत कर ली तो आप भुगते हैं, ठीक है। बस यही मिसाल है हमारी भी, ठीक है, कि जिनको उड़ना आता है तो वो करें, राइट, लेकिन जिनको नहीं आता तो फिर वो तो इस मौके पर इस मामले में तो आप इत्तबा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लम को ये एजाज बख्शा कि अजवाज मुतहरात में बराबरी करने के हुक्म से मुस्तस्ना फरमा दिया, लेकिन रसूल सल्लम ने इस इस्तिस्ना इजाजत के बावजूद अपने अमल में हमेशा बराबरी करने का इंतजाम ही फरमाया। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हदीस की रिवायत यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के नुजूल के बाद भी अजवाज मुतहरात में बराबरी की रियायत हमेशा रखते थे। फिर अपनी इसनाद के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से यह हदीस नकल की जो मुसनद अहमद, तिरमिजी, नसई, अबू दाऊद वगैरह में भी मौजूद है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्सिमु फयअदलु फयकूलु, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अजवाज में बराबरी फरमाते थे और ये दुआ किया करते थे कि या अल्लाह जिस चीज में मेरा इख्तियार है, फयकूलु अल्लाहुम्मा हादा किस्मी फीमा, हादा किस्मी फीमा फीमा अमली को, ठीक है, या अक्समी अक्समी फीमा अमली को, कि इसमें तो मैंने बराबरी कर ली, यानी नफका और शब्बाशी वगैरह में मैंने बराबरी कर ली। फला तलुमनी फीमा ला अमली को, बस जिसमें मेरा इख्तियार नहीं है, मैं जिसमें मालिक नहीं हूं, तो इस मामले में मुझे मलामत ना फरमाए, ठीक है। फला तलुमनी या तलुमनी भी इस्तेमाल होता है ना दूसरे को, फला तलुमनी यानी मुझे मलामत ना फरमाए उस मामले में जिसमें मेरा इख्तियार नहीं है। मतलब क्या था, मुराद क्या थी कि दिल की मोहब्बत है, मुराद दिल की मोहब्बत है, किसी से ज्यादा किसी से कम, ठीक है। तो इससे क्या चीज सामने आ गई कि जो कि बार बार समझाते हैं कि ये मोहब्बत तो जो है ना, ये जज्बात होते हैं और जज्बात जो होते हैं वो हमारे काबू में नहीं होते हैं। तो फिर हमारे काबू में क्या चीज होती है, जैसे कि इस हदीस से साफ जाहिर है कि हमारे काबू में हमारे आमाल होते हैं, ठीक है। तो आमाल फिर कैसे होते हैं, जज्बात दिल के अंदर होते हैं, और हमने क्या समझा है अब तक कि दिल जो है वो आमाल को काबू करता है, ठीक है, लेकिन उसमें तफसील है, दिल आमाल को ऐसे काबू नहीं करता, ठीक है। आमाल जो है ना वो दिल के आमाल अलग होते हैं जो कि मोहब्बत और खौफ और फिक्र और खशियत और ये सारे जज्बात होते हैं, ठीक है ना, ये दिल के की कैफियत है, ये हमारे काबू में नहीं है। हमारे काबू में है जो हम हाथ पैर से या जुबान से या आंखों से या कानों से अमल करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे काबू में दिल नहीं है, हालांकि दिल हमारे अंदर है, हमारा हिस्सा है दिल, ठीक है, लेकिन हमारे काबू में हमारे हाथ पैर हैं, हमारी हाथ, हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि हमसे यहाँ पे कौन मुराद है, हमसे मुराद क्या, भाई दिल जब हम नहीं है, दिल एक अलग चीज है, हमारे अंदर अलग चीज है, इंडिपेंडेंट है और आजाद जो है वो भी एक अलग चीज है, लेकिन हमारे काबू में, तो फिर हमसे क्या मुराद है, ठीक है। हु इज द कमांडर हियर, हु इज द मैनेजर हियर, कौन होता है मैनेजर, कौन होता है। आपके साथ कई दफा बात रिपीट हो चुकी है, तो इंतजार किए बगैर ये कमांडर, ये मैनेजर जो होता है वो हमारी अकल होती है, ठीक है। तो अकल जो होती है ना वो फैसला करती है कि हाथ पैर को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये है हमारे काबू के अंदर। दिल की कैफियत जो होती हैं वो एज अ कॉन्सिक्वेंस पैदा होती हैं किसी मामले की वजह से। ठीक है, जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा रगबत वाली सोहबत इख्तियार करते हैं, ठीक है, रगबत के साथ किसी की सोहबत इख्तियार करते हैं, तो उस सोहबत का असर हमारे दिल पर पड़ता है और दिल के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है, अगर वो कोई ऐसा फर्द हो कि जिसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी सलाहियतें हों, बड़ी अच्छी अच्छी खूबियां हों, ठीक है, तो हम रगबत के साथ उसकी सोहबत इख्तियार करते हैं उसकी खूबियों की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से या उसकी सलाहियतों की वजह से। ठीक है, तो जब हम उसके साथ सोहबत इख्तियार करते हैं ना, तो फिर उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है। ठीक है, तो ये एक पैसिव अमल है, इसमें हमारा इख्तियार नहीं होता। हमारा इख्तियार क्या था? सोहबत इख्तियार करना। ठीक है ना, ये हमारा इख्तियार। ओके, तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि भाई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर बहुत सारी खूबियां थी, क्योंकि ये हदीस जो है ये आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला के बारे में, कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला के साथ मोहब्बत का ताल्लुक भी था, बाकी अजवाज के साथ ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक नहीं था, कुछ के साथ था लेकिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला के मुकाबले में कम था। ठीक है, उस वक्त की बात हो रही है जबकि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला निकाह में थी। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला का मामला तो उससे पहले था, ठीक है, वो तो इंतकार फरमा गई थी, अब उनकी बात हो ही नहीं रही है। अब तो हो रही है कि साइमल्टेनियसली जिन लोगों के साथ नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम थे उनमें सबसे ज्यादा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला थी। ठीक है, बात भी उनसे कम थी, तो उनके अंदर क्या क्या खूबियां थी? एक तो माशाल्लाह खूबसूरत भी थी बहुत ज्यादा, उनके ये भी खूबसूरती के फजाइल भी हैं, लेकिन इल्म फजल कितना जबरदस्त था, और उनकी पीछे से नस्बत भी किसके साथ थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के साथ। तो इस नस्बत की वजह से भी मोहब्बत होती है। ठीक है, तो सही बुखारी में आगे लिखते हैं कि सही बुखारी में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ही की रिवायत है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बीवी की नौबत में उनके यहाँ जाने से कोई उजर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इजाजत ले लेते थे, जबकि ये आयत भी नाजिल हो चुकी थी। ठीक है, यानी बाकायदा इजाजत ले करके उन यानी उनसे माजरत करते थे, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से प्रिविलेज मिल चुकी थी। तो अभी ये नहीं का जिसमें बीवियों में बराबरी करने का फर्ज आपसे माफ कर दिया गया। ठीक है, ये हदीस भी सब कुतुब हदीस में मारूफ है कि मर्ज़े वफात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवाज मुतहरात के घरों में रोजाना मुंतकिल होना मुश्किल हो गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे इजाजत लेकर हजरत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बैत में बीमारी के दिन गुजारना इख्तियार फरमाया था। ठीक है, तो देखें घर वाली क्या मतलब, कितनी बीवियां थी इस वक्त? 9 बीवियां थी। ठीक है, तो घर किसका कहलाता है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, हफ्जा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, राइट, जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर। तो भाई ये सबके, इन सबके तो घर थे, ये बताएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर किधर था? कभी सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर? सारे घरों की निस्बत किसके साथ जाती है? बीवियों के साथ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत ही नहीं करते, ठीक है, बीवियों के घर हैं। तो भाई को क्या कोई 10वां घर भी था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अलग घर नहीं था, बल्कि बीवियों के घर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर थे, लेकिन निस्बत किससे करी घर को? घर को निस्बत करी बीवी के नाम से। ठीक है, तो इसी वजह से ना बीवी को घर वाली कहते हैं। जब बीवी घर को छोड़ करके बाहर निकलना शुरू हो जाए, शॉपिंग मॉल के अंदर घंटों गुजार रही है या दफ्तर के अंदर घंटों गुजार रही है, तो फिर वो घरवाली तो नहीं बनी ना, तो फिर अब वो घरवाली ना कहलाने के काबिल है और ना ही वो फिर डिजर्व करती है कि उसको घर के अंदर जो इज्जतें मिलती हैं, जो घर के अंदर उसको मुकाम होता है, घर की जो ओनरशिप होती है उसके पास, तो उसने तो गिव अप कर दिया ना इस ओनरशिप को, इस इज्जत को उसने तो कुर्बान कर दिया ना दुनिया की खातिर, दुनिया के मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे तो मेरे पास पावर आ जाएगी और मेरे पास इज्जत आ जाएगी और लोग मेरी जो है वो मुझे इंपॉर्टेंस दिया करेंगे। तो भाई ठीक है, वो इंपॉर्टेंस नहीं, आपको इस घर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ऐसी बीवियां, ऐसी जो औरतें होती हैं, फिर उनको घर का सुकून नहीं मिलता, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और जितना ज्यादा घर को छोड़ेंगी उतना ज्यादा ये सुकून और इज्जत जो होती है, जो घर की वजह से मिलती है, वो इज्जत उतनी ज्यादा खत्म हो जाती है। ठीक है, समझने की बात है, नजारा समझता फरमाए। ये हदीस भी कुतुब हदीस में मारूफ है कि मर्ज़े वफ़ात में अच्छा ही हो चुका। अम्बिया अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा यही थी, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा यही थी कि जिन कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई रुख्सत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानी के लिए दी जाती थी, तो उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर आप अमूमन अजीमत पर अमल करते थे। ठीक एक होती है रुखसत और एक होती है अजीमत, यानी अजम और हौसले के साथ जो काम करना होता है। तो आप सोचा रुखसत की बजाय अजीमत पर अमल करते थे, और रुखसत को सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल फरमाते थे, यानी कि रुखसत को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जरूरत के वक्त रुखसत पर भी अमल किया करते थे। ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين الايه। ये हुक्म में ششम यानी छठा हुक्म यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़वाज मुतहरात में बराबर की फर्जियत का उठा देना और आप ससुरों को हर तरह का इख्तियार दे देना, इसकी इल्लत और हिकमत का बयान है। आप ससुरों को ये आम इख्तियार देने की मसलहत यह है कि सब अज़वाज मुतहरात की आंखें ठंडी रहें और वो अपने हिस्से पर राजी रहें। देखें आंखें ठंडी करने का एक कैसा अछूता अंदाज है ये। तो कहते हैं कि यहाँ ये शुबा हो सकता है कि ये हुक्म तो बज़ाहिर अज़वाज मुतहरात की मर्जी और मंशा के खिलाफ और उनके रंज का सबब हो सकता है, ठीक है कि भाई उनका कोई हक ही नहीं है कि वो डिमांड कर सकें कि मुझे ये टाइम दो, मुझे टाइम दो, तो डिमांड ही नहीं कर सकती ना, इसलिए कि उनका हक ही नहीं रखा। जो इसको अजवाज की खुशी का सबब कैसे करा दिया गया, ठीक है, इसका जवाब खुलासा तफसीर में ऊपर आ चुका है कि दरअसल नाराजगी का असल सबब अपना इस्तेहकाक होता है। नाराजगी का असल सबब क्या होता है, अपना हक तलब करना, ये होता है असल मसला, ठीक है, जिसकी वजह से नाचाकी और लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। जिस शख्स के मुतालिक इंसान को ये मालूम हो कि मेरा फला हक इसके जिम्मे वाजिब है, अगर वो इसकी अदायगी में कोताही करे तो रंजो गम पेश आता है, और जिस शख्स पर हमारा कोई हक वाजिब ना हो फिर वो जो कुछ भी मेहरबानी करे वो खुशी ही खुशी होती है। यहाँ भी ये जब ये बतला दिया गया कि अजवाज में बराबरी करना आप ससन पर वाजिब नहीं है बल्कि आप ससन मुख्तार हैं, तो अब जिस बीवी को जितना हिस्सा भी आप ससन की तवज्जो और सोहबत का मिलेगा वो उसको एक एहसान और तबर्रुक समझकर खुश हो, ठीक है। अच्छा, ये मामला नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, ये दूसरे शौहरों के साथ तो खास के साथ तो नहीं है ना, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास क्यों है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कल हमने बात करी थी कि आप ससलम की जिम्मेदारी और मसूलियत भी सबसे ज्यादा थी और इतनी ज्यादा थी कि जितना हम सब नहीं कर सकते, ठीक है ना। पूरे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया तो भी पूरे आलमीन के लिए रहमत के काम करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। तो आप ससलम को फिर ये अल्लाह ताला ने सहूलतें दी थी, ठीक है, कि आपके ऊपर बीवियों का हक इस नहीं रखा था। आप अदा फिर भी करते थे लेकिन हक रखा नहीं था, तो इससे नबी अलैहि सलाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, ठीक है ना, कि भाई आप जैसे चाहे जिंदगी गुजारें, क्योंकि आप ने इस हक को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है। जैसे आप किसी को एक बड़ी जबरदस्त चमकती हुई गाड़ी दे दें लेकिन वो उस गाड़ी को कभी इस्तेमाल ही नहीं करे, तो आपने बेशक गाड़ी तो उसको दे दी लेकिन उसने कभी फायदा तो नहीं उठाया ना उस गाड़ी का। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाला हक का मामला ऐसे ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फायदा नहीं उठाया, ठीक है ना। अगर कभी टाइम लिया भी किसी से तो उससे पूछ करके लिया, तो पूछ करके तो आप वैसे भी ले सकते हैं, यानी आप किसी अपने दोस्त से भी गाड़ी लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मामला हुआ कि बीवी से पूछ के इस्तेमाल किया तो ये तो अपने हक का फायदा उठाना नहीं हुआ ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फायदा नहीं हुआ लेकिन बीवियों का फायदा क्या हो गया कि उनका दिल जो है ना वो मुतमइन रहा, वो यानी वो इस झगड़े में कभी उनका दिल इस तरफ गया ही नहीं कि मैं जो हूँ डिमांड करूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टाइम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई झगड़ा करूँ। अगर वो करती तो जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती कि अल्लाह के नबी के साथ इस तरह का मामला कर रही है। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये एहसान फरमाया कि उनको इस कल्बी तंगी से अल्लाह ताला ने इस तरीके से बचा लिया। तो ये गोया के फायदा जो है वो अजवाज मुतहरात का फायदा था। तो अजवाज मुतहरात को इस रंज से भी बचा लिया कि जी मुझे नहीं दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे, मुझे दे रहे हैं, तो मामला ही नहीं हुआ। बाकी ये कि हमारे लिए जो है वो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने बीवियों और शोहरों के हुकूक जो है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ठीक है। तो शोहर बीवी से भी फिर जाहिर है एक तवक्को रहती है कि भाई मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, उसी तरीके से बीवी को भी शौहर से तवक्को रहती है कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब ये हक की तवक्को रखना जो है ना ये एक नेचुरल बात है, ठीक है। तो अब ये तो होगी, ठीक है। अब इसकी वजह से झगड़ा लड़ाई की नौबत आना, ये फिर हमारे लिए इम्तिहान है कि हम इसको झगड़े के लेवल तक ना पहुंचने दें, ठीक है, बल्कि अपने फायदे के लिए और अपने घर के ओवरऑल ग्रेटर बेनिफिट के लिए अपने हुकूक की डिमांड जो है वो हम छोड़ दें, तो इससे हमें ग्रेटर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वो छोटा हक तो आपको नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जब आपने छोटा हाथ छोड़ दिया ना, तो इसके बदले में अल्लाह ताला आपके दिल को भी इत्मीनान देंगे, और इसकी वजह से, आपके छोड़ने की वजह से अगला बंदा भी जो है ना, उसके भी दिल में अल्लाह ताला ये बात डाल सकते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी पर ही मौकूफ है ऑफ कोर्स, ये बात डाल सकते हैं कि वो भी फिर आपकी कदर करना शुरू हो जाए कि देखो इसका हक था, लेकिन इसके बावजूद इसने मुझसे डिमांड नहीं करी, तो फिर उसको भी शर्म आ जाए अपनी गलती की। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि शर्म आने की वजह से फिर इंसान हक देना शुरू भी कर देता है। और भी इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, लेकिन ये इनमें से एक शक्ल है शर्म। अच्छा, आखिर में फरमाया वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, यानी अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और वो बड़े इल्म वाला बड़े हिम वाला है। आयत मस्कुरा में ऊपर से यहाँ तक इन अहकाम का जिक्र चला आता है जो दरबारे निकाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी तरह की खसूसियत रखते हैं, यानी निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाहों के साथ किसी किस्म की खसूसियत रखते हैं, उन अहकाम का जिक्र चला आता है। आगे भी ऐसे ही बाज अहकाम का बयान आ रहा है। दरमियान में ये आयत के अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का हाल जानता है और अलीम और हलीम है, बज़ाहिर माकबल और माँ बाद से कोई जोड़ नहीं रखता, क्योंकि ये यानी अज़वाजी मामलात के अहकाम आ रहे हैं, तो इनमें जो है वो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के हाल जानते हैं, तो बज़ाहिर जोड़ नजर नहीं आता। तो कहते हैं कि रूहुल मानी में फरमाया कि अहकाम मस्कूरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 से ज्यादा अजवाज की इजाजत और बिला मेहर के निकाह की इजाजत से किसी के दिल में शैतानी वसाविस पैदा हो सकते थे। ठीक है, देखें सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये शैतानी वसाविस तो हमेशा से चले आ रहे हैं ना, तो इस वजह से उस जमाने में भी के शैतान डाल सकता, भाई ये तो अच्छी है भाई कि जो चाहें अपने तौर पर करें, और हमारे लिए तो ये बड़ी बड़ी पाबंदियां हैं, तो ये शैतानी वसाविस होते हैं। इसलिए दरमियान में इस आयत ने ये हिदायत दे दी कि मुसलमान अपने दिलों के ऐसे वसाविस से हिफाजत करें और इस पर ईमान को पुख्ता करें कि ये सब खसूसियात अल्लाह ताला की तरफ से हैं, जो बहुत से हिकमतों और मसालेह पर मबनी है, नफसानी ख्वाहिशात की तामील तकमील का यहाँ गुजर नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अच्छा गुमान रखना किसी नेक इंसान के साथ, किसी मुत्तकी इंसान के साथ, और खुसूसन किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे जिसकी नेकी से आपको भी फायदा हो रहा हो। एक तो होता है ना कि भी नेक लोग हैं लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा नेक आदमी जो कि आपको भी अपनी नेकी से फायदा पहुंचा रहा हो, आप भी उससे सीख रहे हो, आपकी जिंदगी बदल रही हो, तो ऐसे इंसान के साथ तो खुशगुमानी रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई ये जो अगर काम कर रहे हैं ना, जो कि हम यानी एक हमें समझ में नहीं आ रहा या हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो ये यकीनन जो है ना अल्लाह के अताअत में ही ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे होंगे, ये शैतान के अताअत में ये काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा गुमान जो है ना ये रखना फिर यानी जरूरी होता है, अगर ये गुमान ना रखें तो फिर नुकसान उनका नहीं होता, नुकसान हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक उसूल अल्लाह ताला ने ना ये बिल्कुल इब्तिदा में हमें सिखा दिया, और यही उसूल आज भी चला आ रहा है, आज भी हमेशा ऐसा ही होता है कि जो बड़े हो जाते हैं ना, बड़े यानी अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो जाते हैं और ज्यादा यानी ऐसी पोजिशन में आ जाते हैं कि जिनको जिन लोगों को फिर अब बहुत सारे मामलात चलाने होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डीलिंग करनी होती है, और उन्होंने बड़े इदारे चलाने होते हैं, और उन्होंने जो है वो यानी एक इज्तिमाई लेवल का काम करना होता है, तो अब उनके जो मामलात होते हैं ना वो अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि जो आम लोगों के समझ में नहीं आ रहे होते हैं, वो बाय द बुक नजर नहीं आ रहे होते हैं, बाय द बुक नजर नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर वहां पर ना फिर अपने आप को कंट्रोल करना होता है कि भाई बदगुमानी में ना पड़ जाए, उनके ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाए, ऐसी बातें ना शुरू कर दें कि जी हाँ हमारे लिए तो अलग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह की बातें शुरू ना कर दें, बल्कि ऐसा गुमान रखें कि भाई ये नेक है, मुत्तकी है, मैंने इनसे फायदा उठाया है, फायदा पाया है मैंने इनसे, और उलमा जो है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो उलमा तो इनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, इनके साथ ही हैं। ठीक है, तो बस अगर इनकी कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है तो यकीनन इसमें अल्लाह की मसलियत होगी, ये अल्लाह की अदाती की वजह से ऐसा काम कर रहे होंगे, और मेरा मामला अलग है, वही बात है कि जी मैंने तो अभी उड़ना नहीं सीखा है तो मैं तो उस किस्म की हरकत नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने तो उड़ना सीख लिया है ना, तो उन्होंने जब उड़ना सीख लिया है तो अब अगर वो कोई ऐसा काम कर भी लें जो कि बजाहिर सही नहीं है, तो फिर उड़ देंगे, उड़ करके बच जाएंगे। ठीक है, उड़ने से मुराद यहाँ पर वो फिजिकल उड़ना नहीं है कि करामत मिल गई उनको उड़ने वाली, नहीं, बल्कि मतलब ये है कि उन्होंने मकासद शरिया को समझ लिया है और वो जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपने आप को वो गुनाह से बचा लेंगे, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े उलमा को हमने देखा, ठीक है ना, बड़े बड़े उलमा, अपने शेख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं दूसरे उलमा की बात कर रहा हूँ, बेपर्दा औरतों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी औरतें हैं जो कि बेपर्दा तो क्या, वो उनके बाल भी नहीं कवर्ड है, ठीक है ना, ऐसी औरतों के साथ बात कर रहे हैं, खुसूसन टीवी के इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। वो टीवी के इंटरव्यू लेने वाली जो होती है वो तो बिल्कुल ही यानी पैदल होती है ना हर चीज से, लेकिन इतने बड़े बड़े उलमा उनके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब ये काम वो कर रहे हैं तो अब हम अगर देखें ये तो शरीयत के उसूल को पामाल कर रहे हैं और औरत के साथ बैठे हुए हैं और औरत को देख, अच्छा वो इंटरव्यू में पता भी नहीं लगता कि वो औरत की तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर ऐसे रहते हैं, ऐसे कैमरे को कवर करते हैं कि लगता है कि जैसे इनकी नजर उस औरत के चेहरे पर टिकी हुई है, ठीक है ना, ताकि देखने वालों को दिखाएं कि देखो तुम्हारे जो मौलवी साहब है ना ये कैसे दीदे फाड़ फाड़ करके औरत को देखते हैं, ठीक है ना। तो वो तो मीडिया का तो काम ही ये होता है, क्योंकि उनका तो खास फायदा हो रहा होता है इस हरकत से। बहरहाल अब देखने वाला ये कहे कि हाँ भाई हमारे लिए तो ये कहते हैं कि जी औरत के साथ ना बैठा करो, बात ना किया करो और उसकी तरफ ना देखा करो, और देखो अपने आप को तो उन्होंने आजाद किया हुआ इस काम से, ठीक है। तो अब इनके बारे में क्या होगा, बदगुमानी पैदा होगी ना, और फिर आप फिर बुरी बुरी बातें करना शुरू हो जाएंगे, दोस्तों की मजलिस में बैठेंगे और कहेंगे ओ फलाने मौलाना साहब तो जी क्या है रंगीले मौलवी है, राइट, ये रंगीला मौलवी और इस किस्म के हमारे यहाँ टाइटल चलते हैं ना उलमा के लिए, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा ईमान तो गया, ठीक है, बिकॉज अब जो है ना हम शैतान के नरगे में बस तकरीबन चुके हैं पूरे के पूरे, ठीक है, क्योंकि उलमा के बारे में वजन हो चुके हैं। तो ऐसे मौके पर यही अपने आप को संभालना होता है, अपने जुबान को रोकना होता है, अपने ख्यालात के अपने जो वसवसे आ रहे होते हैं ना इन वसवसों को झटकना होता है, बहुत ही ज्यादा आपके साथ मुश्किल हो रही है वसवसों को झटकने की, तो फिर किसी से पूछें, किसी से बात कर लें कि भाई मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनके बारे में अच्छा गुमान रखने के लिए, तो अब आप मुझे कोई मशवरा दे दें, कोई बात मुझे समझा दें। उम्मीद है कि आप इस नीयत से अगर किसी के पास जाएंगे ना, जैसे अपने शेख से बात कर रहे हैं या किसी आलिम से बात कर रहे हैं कि भैया वसवसे से मैं निकल आऊं किसी तरीके से, बिकॉज नीयत आपकी है निकलने की, तो यकीन अल्लाह ताला उनके जुबानी आपको कोई ऐसी बात बता देंगे कि आपके दिल के वसवसे जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे उसूल की बातें आपको बता रहा हूँ, अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी होता ना फिर भी इन उसूल की बातों को याद रखें, क्योंकि आप इन बातों के जरिए से बहुत सारे लोगों को के ईमान के बचने का सबब बन सकती हैं, ठीक है, कि लोगों के दिलों में आपके रिश्तेदारों में और दोस्तों में ऐसे लोग बहुत सारे होंगे कि जिनके दिलों में ऐसी बातें हैं, तो उनको इस तरह से कुरान की मिसालें दे करके, तफसीर से मिसालें दे करके उनको बात समझाई जा सकती है कि भाई ये आज का मसला नहीं है, ये शुरू दिन से अल्लाह ताला ने ऐसे ही मामला रखे, अल्लाह ताला आजमाते हैं इस तरीके से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिदाना जिंदगी और उसके साथ तादद अज़वाज का मसला, ये तादद अज़वाज का मसला भी तकरीबन ऐसे ही मसला है, ठीक है, कई मल्टीपल शादियां जो की, तो आदाए इस्लाम ने यानी दुश्मनान इस्लाम ने हमेशा मसला तादद अज़वाज और खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज, एक तो वो चार बीवियों के ऊपर ही उनको एतराज होता है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां एट अ टाइम या 11 बीवियां ओवरऑल, तो उनकी कसरत अज़वाज को इस्लाम की मुखालफत में मौजू बहस बनाया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को सामने रखा जाए तो किसी शैतान को भी शान रिसालत के खिलाफ वसवसा पैदा करने की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है, यानी गुंजाइश तो नहीं रहती, लेकिन शैतान ने तो फिर भी करना होता है, तभी तो वह शैतान होता है। जिससे साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से किया, जो बेवा सन रसीदा साहिब औलाद और 2 शौहर में रहने के बाद आई थी, राइट, इतने बड़े बड़े खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ थे, यानी जिनकी बात जो है ना वो हम तो निकाह ऐसी औरत से कभी करें ना, ठीक है, 25 साल का नौजवान हो और ऐसी औरत से निकाह करे, और 50 साल की उम्र तक सिर्फ एक उसी एक सन रसीदा बीवी के साथ शबाब का पूरा सारा जमाना गुजार दिया। 50 साल तक तो फिर इंसान की जवानी खत्म हो जाती है। अच्छा, कुछ बदबख जो है वो ऐसी बातें भी करते हैं कि खदीजा तनाजा की माल और दौलत की वजह से किया था, तो बाकी सारी चीजें फिर इग्नोर कर दी माल और दौलत की वजह। तो भाई एक दफा जब शादी हो गई, माल और दौलत मिल गई, खदीजा तनाजा ने शुरू ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल और दौलत सारा दे दिया था, ठीक है ना, कदमों पर रख दिया था आप मिल्कियत में, तो फिर उसके बाद दूसरी शादियां कर लेते, ठीक है ना, अगर नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला माल दौलत की वजह से करी थी, तो फिर उसके बाद जब भी माल दौलत मिल गया अपनी ओनरशिप में आ गया, अब कर लेते दूसरी शादियां, नहीं करी जब तक कि उनका इंतकाल ना हो गया, उसके बाद भी करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरों ने मशवरा दिया था कि आपको जरूरत है कि आपके यानी आपकी उम्र ऐसी हो चुकी है और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यू नीड ए हेल्पर। तब हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, जो कि नबी रसूलुल्लाह सल्लम की तकरीबन हम उम्र थी, वो भी कोई कल की बच्ची नहीं थी, हम उम्र थी, राइट, सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। तो उनके साथ निकाह हुआ, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद जाकर के वो सारा जो मामला हुआ, हजरत आयशा सिद्दीक अन्हा की तस्वीर दिखाई गई और इस तरह मामला ऐसा हुआ, फिर कहीं जाकर के आयशा सिद्दीक अन्हा से निकाह हुआ। और फिर जो है वो तो फिर मदीना मुनव्वरा की जिंदगी थी, जिसमें के यानी 55 साल की उम्र से तकरीबन ज्यादा जो टाइम होगा उसके अंदर फिर दूसरे दूसरे निकाह किए। तो ये 50 साल दौर उम्र मक्का के लोगों के दौरे उम्र मक्का के लोगों के सामने गुजारा। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत के बाद शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू हुई और मुखालफी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐब लगाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। साहिर कहा, शायर कहा, मजनून कहा, मगर कभी किसी दुश्मन को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी चीज मनसूब करने का मौका नहीं मिल सका जो तकवा और तहारत को मशकूक कर सके। कि घर में एक बीवी रखी हुई है लेकिन नाउज़बिल्लाह सुमा नाउज़बिल्लाह बाहर से जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, कोई नहीं इस तरह का इल्जाम लगा सका। 50 साल उम्र शरीफ गुजरने और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा निकाह में आई, ये भी बेवा थी, राइट, ये भी नहीं कि अब जो है वो किसी कमारी से शादी कर लेते। हिजरत मदीना और उम्र शरीफ 54 साल हो जाने के बाद 54 राइट, दो हिजरी में हजरत सिद्दीका आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती आदत सत्संग के घर में हुई। इसके एक साल बाद हजरत हफ्जा रज़ी अल्लाह अन्हा से और कुछ दिनों के बाद हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। यानी ये जो पांचवी सदी का वाक़ है ना, ये सूरह अहज़ाब का, ये हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी का मामला हुआ, ठीक है। तो ये तरतीब इस तरह से थी। ये हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा चंद माह के बाद वफात पा गईं। 4 हिजरी में हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो साहिबे औलाद बेवा थी, अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके बेटे भी मौजूद थे, तो वो आपके निकाह में आई 5 हिजरी में। अच्छा, ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा सॉरी दूसरी थी, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा ये दूसरी ज़ैनब थी, और ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ये 5वीं हिजरी के अंदर, जो सूरह अहज़ाब का शान नुज़ूल भी है। तो इनसे फिर बहुक्म खुदाबंदी निकाह हुआ, जिसका जिक्र, ये भी बेवा थी यानी ये भी तलाक शुदा थी, मुतल्लका थी, जिसका जिक्र सूरह अहज़ाब शुरू में आ चुका है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 58 साल थी। आखिरी 5 साल में बाकी अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल हुई। 58 ईयर्स तक तो ये मामला था। पैगम्बर की खानगी जिंदगी और घरेलू मामलात से मुतालिक अहकाम दीन का एक बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना पैगम्बरों के इस तरह के मामला उम्मत को बताने होते हैं। इन 9 अजवाज मुतहरात से जिस कदर दीन की अशात हुई, इसका अंदाजा सिर्फ इससे हो सकता है कि सिर्फ हजरत सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से 2,210 अहादीस, ठीक है, यूनिक अहादीस, वरना तो लाखों अहादीस हैं, यहाँ पर यूनिक हदीस की बात हो रही है कि जिसमें कि एक सनद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तक पहुंचती है, और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से 368 अहादीस की रिवायत मोतबर कुतुब हदीस में मौजूद है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो अहकाम और फतावा लोगों को बताए, इनके मुतालिक हाफिज़ इब्न क़य्यिम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अलामुल मुवक्किन में लिखा है कि अगर उनको जमा किया जाए तो एक मुस्तकिल किताब बन जाए। यानी हदीसें अलग हैं और उन हदीसों की बुनियाद पर या अपनी अपनी समझ की बुनियाद पर जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अहकाम बताए और फतावा दिए, लोगों के पूछने के ऊपर जो फतवे दिए, यानी ये मुफ्ती थी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा मुफ्ती के दर्जे की साहबिया थी, ठीक है, तो वो अलग हैं हदीसों के अलावा, उन पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। 200 से ज्यादा सहाबा हजरत सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के शागिर्द हैं जिन्होंने हदीस और फिक्र और फतावा उनसे सीखे हैं, ठीक है। जो महरम सहाबी थे वो घर के अंदर जा करके नबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से इल्म हासिल करते थे, और जो गैर महरम सहाबी थे वो घर के बाहर दीवार की ओट से या पर्दे की ओट के पीछे से फिर बैठ करके सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लेक्चर सुना करते थे, नसीहतें सुना करते थे। बहुत सी अजवाज को हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल करने में उनके खानदान को इस्लाम की तरफ लाने की हिकमत भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इस इजमाली नक्शे को सामने रखें तो क्या किसी को ये कहने की गुंजाइश रह सकती है कि ये तअद्दुद और कसरत अज़दवाज माअज़ल्लाह किसी नफसानी और जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए हुआ था? अगर ये होता तो सारी उम्र तजर्रुद या एक बेवा के साथ गुजारने के बाद उम्र के आखिरी हिस्से को इस काम के लिए क्यों मुंतखब किया जाता? ये मज़मून पूरी तफसील के साथ नीज असल मसले तअद्दुद अज़दवाज पर शरई और अकली, फितरी और इक्तिसादी हैसियत से मुकम्मल बहस मारफुल कुरान जिल्द दोम सूरह निसा की तीसरी आयत के तहत में आ चुकी है, वहां देखा जाए। ठीक है, मजीद अगर पढ़ना है तो वहां देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है कि जिसकी ना इल्मी की वजह से ना बड़े मुसलमान बदगुमान हुए। आपको, आप लोगों को पिछले दिनों एक वाकया भी भेजा था, एक गालबन जामशोरो या नड़काना के रहने वाले कोई डॉक्टर साहब थे, जब वो लंदन जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो रास्ते में ही यानी प्लेन के अंदर ही एक क्रिश्चियन लड़की ने उनको ऐसा बदगुमान किया इस मामले में कि काफिर ही हो गए और 8 साल तक काफिर रहे। ठीक है, जब इस मसले को उनके सामने खोला गया तब वो वापस मुसलमान हुए। ठीक है, सातवां हुक्म, ला यहलु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दला बिहन्ना मिन अज़वाजु वलो अअजबका हुस्नुहुन्ना, यानी इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरी औरतों से निकाह हलाल नहीं है, और ये भी हलाल नहीं कि मौजूदा अजवाज में से किसी को तलाक देकर इसकी जगह दूसरी बदल। ठीक है, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि इनको नहीं छोड़ सकते बाप। ठीक है, इस आयत में लफ्ज मिम बादी की दो तफसीर हो सकती हैं। एक ये कि मिम बादी से मुराद ये हो कि बाद उन 9 औरतों के जो उस वक्त आप निकाह में है, यानी जैनब बिनते खुजैमा का तो इंतकाल हो गया और खदीजतुल कुबरा अनहा का इंतकाल हो गया, अब कितनी रह गई थी? 9। ठीक है, तो इन 9 के जो इस वक्त आपसे उनके निकाह में है और किसी से आपसे उनका निकाह हलाल नहीं है, बास यानी एक तफसीर ये है, बास सहाबा और आइमा तफसीर से भी यही तफसीर मनकूल है। जैसा कि हजरत अनस रहा उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने अजवाज मुतहरात को इख्तियार दिया कि दुनिया तलबी के लिए आपसे से जुदाई इख्तियार करें, ठीक है, ये भी शुरू में था ना कि तुम लोग छोड़ दो तो अल्लाह के नबी तुम्हें सराहन जमीला के साथ रुख्सत कर देंगे। सराहन जमीला 2 मुकाम पर आया है, राइट, एक तो ये और दूसरा तलाक का, जहाँ पर जिक्र है कि मोमिनीन के लिए तलाक का मामला किया, ठीक है, इद्दत के बगैर जो हो तो उनको सराहन जमीला के साथ रुख्सत कर दो। और वो पहली दफा भी आया था जब नबी अलैहिस्सलाम की अजवाज को कहा गया था कि अगर तुम दुनिया को पसंद करती हो तो बता दो और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कि दुनिया तलबी के लिए आपस में जुदाई इख्तियार करें या फिर तंगी और फराखी जो कुछ पेश आए उस पर कनात करके आपस में नौशियत में रहे। तो सब अजवाज मुतहरात ने अपने नफ्ते की ज्यादती के मुताबिक को छोड़कर इसी हाल में जौजियत के अंदर रहना इख्तियार किया। तो इस पर बतौर इनाम के अल्लाह ताला ने आपस में की जाते गरामी को भी इन्हीं 9 अजवाज के लिए मखसूस कर दिया, इनके सिवा किसी से निकाह जायज ना रहा। ठीक है, यानी अल्लाह ताला के लिए जब कोई कुर्बानी देता है को नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला जो है ना उसको रिवॉर्ड देते हैं और दुनिया में भी रिवॉर्ड दे देते हैं, जैसे इनको ये एश्योरेंस वाला रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है, कि तुम पक्की हो, अब तुम्हें छोड़ने की इजाजत नहीं है। ठीक है, हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अज़वाजे मुतहरात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमा दिया कि आपके बाद भी वो किसी से निगाह नहीं कर सकती, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके लिए मखसूस फरमा दिया कि आप उनके अलावा और कोई निकाह नहीं कर सकते। हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह से भी एक रिवायत में यही तफसीर मनकूल है। ठीक है, तो बीवी को जब ये एश्योरेंस मिल जाए कि जी उसको नहीं छोड़ा जा सकता, तो कैसी उसको यानी एक यानी सेफ्टी मिल जाती है उसको। नॉन मुस्लिम्स को कुछ पता हो ना हो तअद्दुद अज़वाज का जरूर पता होता है, ऐसा क्यों है? उनको पता इसलिए होता है क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है इसके बारे में, उनके मीडिया ने और यहूदियों ने जो कि मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और यहूदी तो शुरू दिन से हासिद हैं इस्लाम के, नबी अलैहि सलाम के हासिद हैं, तो हासिद जो होता है ना वो फिर हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि किसी तरीके से नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, बाकी लोग जो है वो बेशक दुश्मन है लेकिन हासिद हर दुश्मन नहीं होता, हर दुश्मन हासिद नहीं होता। ठीक है, यहूदी हासिद है तो इस वजह से ना वो इस बात को बहुत प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये नाजुक नुक्ता है, और ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि जी ये क्या हो गया, जी एक से ज्यादा और इसके बाद ये 9 या और फिर वो भी आयशा सिद्दीक की उम्र भी वो भी इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से, वो भी इसी मजमून में ही है। ठीक है, तो और फिर जाहिर है जो रोशन ख्याल मर्द होते हैं तो उनके लिए भी ये नुकता जो है वो समझ में आने वाला नहीं होता, जैसे कि उन डॉक्टर साहब का मामला यही था, इस वजह से ये बहुत ज्यादा पता होता है खासी दीन के प्रोपेगेंडा की वजह से। हजरत अकरमा रहमतुल्लाह इब्ने बाज अन और मुजाहिद अहमद तफसीर से एक रिवायत में लफ्ज मिन बादी की ये तफसीर नकल की गई है कि मिन बादिल असनाफिल मस्कूरा, यानी शुरू आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितनी अकसाम औरतों की हलाल की गई हैं इसके बाद यानी इनके सिवा किसी और किस्म की औरतों से, यानी किस्म इज द कीवर्ड है कि किसी और किस्म की औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल नहीं है। मसलन शुरू आयत में अपने खानदान की औरतों में से सिर्फ वो हलाल की गई जिन्होंने मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा हिजरत करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाफ़क़त की थी। खानदान की औरतों में गैर मुहाजरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हलाल नहीं रखा गया था। इसी तरह मुमिना की कैद लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहले किताब की औरतों से निकाह नाजायज करार दे दिया गया। तो आयत के जुमला मिम बादू का मतलब ये है कि जितनी किस्में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल कर दी गई हैं सिर्फ इन्हीं में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो सकता है, आम औरतों में तो मुसलमान होना ही शर्त है और खानदान की औरतों में मुसलमान होने के साथ मुहाजरा होना भी शर्त है। जिनमें ये दो शर्तें मौजूद ना हो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल नहीं हो सकता, नहीं है। ठीक है, तो ला यहल्लु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तबदला बिहन्ना मिन अजवाजुन, ठीक है, तो इसका ये मतलब है, बस ये कैटेगरीज डिफाइन हो गई हैं, अब इनके अंदर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जिनमें ये दो शर्तें मौजूद ना हो उनसे आपसे दुनिया का हलाल नहीं। इस तफसीर के मुताबिक ये जुमला कोई नया हुक्म नहीं बल्कि पहले ही हुक्म की ताकीद और तौजीह है, ठीक है, जो शुरू आयत में बयान हुआ है। ठीक है, तो उसी की ताकीद और तौजीह में, यानी ये तीन तफसीरें उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो तीसरी तफसीर अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा आगे चलें कि इस आयत की वजह से 9 के बाद किसी और औरत से निकाह हराम नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि गैर मोमिना और खानदान की गैर मुहाजरा से निकाह ममनू हुआ है, जो पहले ही मालूम हो चुका है। बाकी औरतों से मजीद निकाह आप ससन के इख्तियार में रहा। ठीक है, यानी पहली जो तफसीरें थी वो ये थी कि इनके अलावा अब मजीद निकाह आप कर ही नहीं सकते, ये पहली दो तफसीरें थी। ओके, तीसरी तफसीर क्या है कि नहीं, इस कैटेगरी के अलावा आप किसी कैटेगरी से निकाह नहीं कर सकते, या जो कैटेगरीज हराम कर दी गई हैं उन कैटेगरीज को बाद में आपके लिए हलाल नहीं किया जाएगा। हाँ, आप जो कैटेगरीज आपके लिए हलाल हैं, जो किस्म हलाल हैं, तो उनमें आप मजीद निकाह कर सकते हैं, ये तीसरी तफसीर के मुताबिक है। ठीक है, तो फरमाया कि बाकी औरतों से मजीद निकाह आपके इख्तियार में रहा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत से भी इस दूसरी तफसीर की तायद होती है कि आप ससन के लिए मजीद निकाह की इजाजत नहीं है। यानी दूसरी तफसीर क्या है या तीसरी तफसीर क्या है, दूसरी ही बल्कि बनती है, पहली दो जो है वो एक ही जैसी है, बस फर्क यह है कि पहली वाली जो है वो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है और दूसरी जो है हजरत इब्ने अब्बास का कौल है। ठीक है, तो इस अखबार से दूसरी ही बनी। अच्छा, आखिरी चीज आज के लिए, ताकि अब अगली क्लास में इंशाल्लाह अगली आयत आप पढ़ेंगे और उसकी तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या उसको पढ़ेंगे, तो फरमाते हैं वला अन तबद्दला बिहिन्न मिन अज़वाजिन, आयत मस्कूरा की अगर दूसरी तफसीर अख्तियार की जाए तो इस जुमले का मतलब वाज़ह है कि अगरचे आप को मौजूदा अजवाज के अलावा दूसरी औरतों से निकाह बशरायत मस्कूरा जायज है, मगर ये जायज नहीं कि एक को तलाक देकर उसकी जगह दूसरी को बदले, यानी खालिस तब्दीली की नियत से कोई निकाह जायज नहीं है, बगैर लिहाज नियत तब्दीली के जितने चाहे निकाह कर सकते हैं। और अगर आयत मुस्कुरा की पहली तफसीर मुराद दी जाए तो मान ये होंगे कि आइंदा ना किसी औरत का इजाफा मौजूदा अजवाज में आप कर सकते हैं और ना किसी की तब्दीली कर सकते हैं कि इसको तलाक देकर इसके कायम मुकाम किसी और औरत से निकाह कर लें। ठीक है, यानी इधर वे ये जो 9 है ना ये पक्की है, ठीक है ना, इनको नहीं छोड़ सकते आप। बाकी दो तफसीरें क्या हैं कि दो तफसीरें ये हैं कि आप मजीद निकाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये इख्तलाफ है इन दो तफसीरों के अंदर। ठीक है, कोई सवाल आगे फिर जो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उनके तहत फिर मसला हिजाब वगैरह शुरू होता है, पर्दे का हुक्म, और माशाल्लाह इसमें जो उन्होंने बातें लिखी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, यानी इतना हजरत ने एहसान किया हमारे ऊपर कि हम बदला चुकाना दूर की बात, हम इसका इस्तेजार ही नहीं कर सकते कितना बड़ा इन्होंने एहसान किया। पर्दे के अहकाम को ऐसे लिख कर दिया, अजीब। और इसमें खाली पर्दे के अहकाम नहीं है, इसमें ऐसी बातें हैं कि जिनमें यानी ओवरऑल दीन के मसले मसाइल का हल है, सिर्फ पर्दे का हल मसला नहीं है। कल नजमा बाजी ने टेस्ट लेना है, टाइमिंग आज बताना थी, बाजी लॉग आउट हो गई और दोबारा ऑनलाइन नहीं आई तो पता नहीं चल सका। अच्छा, कल आपकी क्लास होगी? हाँ, कल तो क्लास होती है, तो क्या उनका टेस्ट जो है वो 11 बजे के बाद भी चलेगा? उनको तो पता है ना कि उनकी क्लास के बाद, हमारी क्लास तो वैसे ही 11 बजे होती है, कल वैसे आखिरी क्लास है इस हफ्ते की। और हम बल्कि बात भी यही कर रहे थे आज के, हम लोगों को शायद ट्रैवल करना हो अगले हफ्ते के आखिर में, इंशाल्लाह भी जरा उसकी चीज़ें रहती हैं, तो इस वजह से अभी जितनी क्लासें कर सकते हैं कर लें, बिकॉज ट्रैवलिंग की वजह से कुछ गैप्स तो आएंगे, चाह रहे थे कल भी क्लास हो जाए। बहरहाल हमारी क्लास का टाइम तो 11 है, अगर उनका टेस्ट 11 से आगे जाता है तो फिर नहीं करेंगे, अगर नहीं जाता तो कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।